الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ہماری اس آن لائن تفسیر کلاس جو کہ خاص طالب اور سالکات کے لیے شروع کی گئی ہے آج کل تو ظہر کی ہم نے ابھی دو آیات پڑھی ہیں. تو ان کے جو خلاصہ تفسیر ہے تو اس سے ہم نے کلاس کا آغاز کرنا ہے. پیج نمبر 632 کے اوپر ہم تھے تو اس کے تقریباً درمیان میں ان آیات کا ترجمہ تھا کہ یہ لوگ محض خدا کی محبت سے انما نطعمکم کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو تم کو کھلاتے ہیں نا یتیموں کو مسکینوں کو, تو بلکہ اس سے پہلے والی آیت وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کہ یہ لوگ محض خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اسی کے اوپر پھر ساری ڈسکشن ہماری آخری کلاس کی ہو گئی تھی کہ خدا کی محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تو اگر کسی کو یعنی اگر تو خیر نہیں چاہیے کہ جنہوں نے مس کر دیا ہے تو وہ ریکارڈنگ کو سنیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد حضرت نے لکھا تھا اس کی تفسیر میں کہ قیدی اگر مظلوم ہے کہ ظلمن قید کر لیا گیا تب تو اس کی اعانت کا مستحسن ہونا ظاہر ہے, اور اگر ظالم ہے کہ ظلم کی سزا میں قید ہوا ہے تو شدت حاجت کے وقت اس کا اطعام بھی مستحسن ہے. یعنی اسلام, دین اسلام ہمیں احسان کرنا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, احسان کس چیز کو کہتے ہیں؟ عدل, عدل سے اوپر جو چیز ہوتی ہے اس کو احسان کہتے ہیں. عدل ہوتا ہے انصاف کرنا, جو ڈیزرو کرتا ہے جو چیز اس کو وہ دے دینا. ٹھیک ہے, جیسے اس نے آپ کے ساتھ بھلا کیا تو اس کے جواب میں اس کے ساتھ بھلائی کرنا, اس کو عدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انصاف ہماری زبان میں کہتے ہیں. لیکن احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. ٹھیک ہے, وہ ڈیزرو نہیں کرتا کوئی اچھی چیز کیونکہ اس نے چوری کری ہے, ڈاکہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے, اس نے کوئی ایسا جرم کیا جس کی وجہ سے اس کو قید خانے کے اندر امپریزن کیا گیا ہے, بند کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ شخص تو سزا ڈیزرو کرتا ہے نا, تو اب دل میں یہ جذبات پیدا ہوتا ہے کہ اس کو تو کھانا نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی تو مدد نہیں کرنی چاہیے, رائٹ, کیونکہ یہ تو مجرم ہے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس کو قاضی نے عدل کا فیصلہ سنا کر کے قید خانے کے اندر بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس کے جرم کی سزا مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, قید خانے والوں کی طرف سے. ٹھیک ہے, یہ سزا اب ہم نے نہیں دینی ہے ان کو. ہر کوئی قاضی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا, ہم ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم قاضی بن جائیں, ہم جو ہے وہ فیصلے سنانا شروع کر دیں, ہم سزا دینا شروع کر دیں. یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نہیں دی ہے, یہ صرف قاضی کو دی ہے یہ اتھارٹی. ٹھیک ہے نا, اور اسی کو یہ کام کرنا بھی ضروری ہے. اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو اس کی جاب ختم کر دی جائے گی. بھائی آپ کیوں عدل سے فیصلہ نہیں کر رہے, آپ تو پھر اس جاب پہ رہنے کے قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو قاضی کا کام ہے سزا دینا, یہ ہر شہری کا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اب یہ قیدی اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا بلکہ یہ احسان ہوگا. ایون دو ہی ڈزنٹ ڈیزرو اٹ اپنے برائیوں کی وجہ سے, لیکن ہم اس کے اوپر پھر بھی احسان کریں, اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, یہ جنرل یعنی ٹیچنگ جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر خاص خاص جو سچویشنز ہوتی ہیں ان کے مطابق خاص حکم بھی ہو سکتے ہیں. ठीक है ना, जैसे एक स्पेशल सिचुएशन है कि जिसके अंदर कोई फर्द ऐसा है कि जिसके साथ एहसान करने से नुकसान होगा, ठीक है, उसका भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर एहसान किया गया तो वो उसको फॉर ग्रांटेड लेगा और वो मजीद गुनाह करेगा, मजीद खराबी पैदा करेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में कहा जाएगा कि नहीं, इसके साथ एहसान करना इसके साथ जुल्म है, ठीक है, या ये कि कोई और भी रीजन हो सकती है। तो वो तो स्पेसिफिक केसेस होते हैं। हमेशा रूल क्लास के अंदर रूल पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो उसूल है ये क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। और जो खास केसेस होते हैं उनका मामला कैसे पता चलता है, उनका मामला जो है ना वो उस खास केस को अलग से स्टडी करके पता लगता है, ठीक है ना, उस इसको यानी गौर से देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, फिर उसके बारे में फैसला किया जाता है कि जी यहाँ पर एहसान करना फायदेमंद होगा कि नुकसानदायक होगा। लेकिन जनरल रूल क्या है कि कैदियों के साथ भी एहसान करना नेकी का काम है, ठीक है। तो कुरान के अंदर जनरल रूल्स बता दिए गए हैं, कुरान के अंदर हर एक्सेप्शनल केस को एड्रेस नहीं किया गया है, ठीक है। अगर किया जा रहा होता तो फिर जिस तरह आपने कभी देखा है कि वो जो कानून की किताबें होती हैं, लॉ की जो बुक्स होती हैं, वकील साहब के अगर दफ्तर में जाएं तो वो कितनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, राइट, और उनके उनसे जो है वो शेल्फ्स के शेल्फ्स भरे हुए होते हैं। तो वो इतनी बड़ी बड़ी किताबें क्यों होती हैं, क्योंकि उनके अंदर हर एक्सेप्शनल केस को, हर सिचुएशन को एड्रेस किया गया होता है। तो अगर कुरान के अंदर भी इसी तरीके से एड्रेस किया गया होता हर केस को, तो फिर कुरान भी कितना बड़ा होता, होता ना, ठीक है। तो इस वजह से ना कुरान में जनरल रूल्स बताए गए होते हैं। तो फिर ये एक्सेप्शन केसेस हम किससे पूछते हैं, दौरे हाजिर के उलमाए कराम से पूछते हैं, दौरे हाजिर जो हमारे सामने मौजूद जिंदा उलमाए कराम है, ठीक है ना, 100 साल पहले वाले उलमाए कराम नहीं, 1000 साल पहले गुजरे हुए उलमाए कराम नहीं, बल्कि जो जिंदा उलमाए कराम हमारे सामने मुआशरे के अंदर मौजूद होते हैं, उनसे हम अपने मखसूस हालात के बारे में फतवा लेते हैं, इसको कहते हैं फतवा लेना, ठीक है। तो कोई ये कहे कि नहीं जी कुरान तो मौजूद है, राइट, हदीस की किताबें भी मौजूद हैं, बल्कि फिका की भी किताबें मौजूद हैं, तो उलमाए कराम की कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। नहीं, उलमाए कराम की हमेशा ज़रूरत रहेगी, इसलिए कि हर दौर हर ज़माने में नए हालात पैदा होते हैं, नई सिचुएशंस दरपेश होती हैं, ठीक है। तो उनके लिए कुरान और हदीस की रोशनी में गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये दौरे हाजिर के उलमाए कराम का काम होता है, ठीक है ना। ये गुजरे हुए पुराने ज़माने के उलमाए कराम ये काम नहीं कर सकते, इसलिए कि वो तो ज़िंदा ही नहीं है, इसलिए कि वो तो दौरे हाजिर के हालात को स्टडी नहीं कर सकते, उनके साथ तो आप बात ही नहीं कर सकते, कैसे बात करेंगे उनसे जाकर के, कैसे उनसे फतवा लेंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये बात समझ में आती होगी, अगर नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर एक सवाल जहन में आया जो कि आप में से किसी ने जिसको भेजा था, ठीक, बल्कि एक से ज़्यादा लोगों ने, दो कम अज़ कम आप में से ने ये सवाल अपने अपने तौर पर भेजे थे। वो सवाल कुछ इस तरह से थे कि जो कि जनरल नौइयत के सवाल थे, ठीक है, कि भाई हमें अपने बच्चों, नहीं अपने बच्चों को नहीं, सॉरी, बच्चों को ऐसी ऐसी किताबें पढ़ करके सुनानी चाहिए कि नहीं सुनानी चाहिए, ठीक है, बात सवाल समझ में आ रहा है। बच्चों को ऐसी ऐसी किताबें जो उन्होंने डिस्क्राइब करनी थी वो पढ़ करके सुनानी चाहिए कि नहीं सुनानी चाहिए, ठीक है। और फिर किसी और तालिबा ने, आप में से शायद मौजूद भी होंगी क्लास में, उन्होंने सवाल किया कि जी इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना क्या ये क्या कहते हैं उसको, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, दौलत का अंबार लगाना, क्या ये इस जिमन में आएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टीज खरीदना क्या ये दौलत के अंबार लगाने की तारीफ में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ना इस आजिज ने इनको सीधा जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इसलिए आप में से हैं, राइट, तालिबे इल्म हैं, राइट, दीन को सीख रही हैं, सिर्फ ये नहीं कि आम लोगों की तरह से किसी ने आकर के कोई मसला पूछ लिया, ठीक है, जिसका कि कोई क्लास में कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका इल्म के सिलसिले से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसने आकर के कोई सवाल पूछ लिया तो अब उसको सीधा जवाब दे देना, ठीक है। इनको सीधा जवाब नहीं दिया, کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ طالب علم ہیں, ٹھیک ہے, سلوک کے راستے کے اوپر چلنے والی ہیں, تو ان کو تو مسئلہ سمجھانا ہے پورا, ٹھیک ہے, ان کو اس طرح سے ٹرخانی دینا سٹریٹ جواب دے کر کے, ٹھیک ہے, بلکہ ان کو مسئلہ سمجھانا ہے تاکہ یہ بات کی سمجھ حاصل کر سکیں, کیونکہ انہوں نے آگے جا کر کے اوروں کو سمجھانا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ سنت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر صحابی کو ایک جیسا جواب نہیں دیتے تھے, بلکہ کچھ صحابہ کو نا ان کے سوال کے اوپر کاؤنٹر سوال کرتے تھے, ٹھیک ہے, کاؤنٹر سوال, ان کے سوال کا جواب نہیں دیتے تھے بلکہ ایک اور سوال کرتے تھے, پھر اس کا جواب ملتا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ سمجھایا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ اپنے خاص اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز بنانا مقصود ہے, ٹیچرز بنانا مقصود ہے, ٹھیک ہے. تو اب نا یہ جو سوال تھا, پھر اس کے بعد اساتذہ نے پھر ٹیڑھا جواب یا نان اسٹریٹ جواب کیا دیا, وہ یہ دیا کہ یہ جو فار ایگزامپل انویسٹمنٹ, اس میں انویسٹمنٹ کے بارے میں سوال ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو سوال ہے نا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس سے پوچھ رہا ہے, کون کس سے پوچھ رہا ہے. اگر یہ ایک طالب علم اپنے استاد سے پوچھ رہا ہے, طالب علم اپنے استاد سے پوچھ رہا ہے یا اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے پوچھ رہا ہے, تو یہ سوال صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سوال صحیح ہے کہ بھائی انویسٹمنٹ کا جو یہ طریقہ ہے تو یہ اکیومولیشن آف ویلتھ کرائے گا کہ نہیں کرائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ سوال ایک سالکہ یا سالک جو کہ اپنی اصلاح کروانا چاہتا ہے, اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے شیخ سے پوچھ رہا ہے یا پوچھ رہی ہے, تو یہ سوال غلط ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی سالکہ اپنے شیخ سے یہ سوال پوچھ رہی ہے, یعنی کسی ایسے شخص سے پوچھ رہی ہے کہ جس کو کہ وہ اپنا مینٹور, شیخ, پیر سمجھتی ہے, تو اس وقت یہ سوال غلط ہے. اب آپ میں سے اگر کوئی بتائے کیوں غلط ہے, وہ طالب علم والی بات تو سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا کہ وہ تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی تفصیل بتائی جا سکتی ہے کہ بھائی کیوں صحیح ہے, اور یہاں پر اگر شیخ کے ساتھ یہ سوال کیا جائے تو یہ غلط کیوں ہے. آپ میں سے کوئی جواب دے گا اس کا؟ جی ریز ہینڈ کر کے اگر احسان کر دیا کریں, ہمیں اندازہ ہو جائے کوئی لکھ رہا ہے جواب, اس لیے کہ کوئی اگر نہیں لکھ رہا تو پھر ویٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے نا, ٹائم ضائع ہوگا, ایک گھنٹے کی تو کلاس ہوتی ہے. جی نہیں کوئی بھی لکھ رہا, چلیں ٹھیک ہے, پھر ویٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ اس لیے کہ طالب علم استاد سے علم حاصل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ عمومی علم حاصل کر رہا ہوتا ہے, رولز کا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے, اصولوں کا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسا کہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی نا, قرآن کے اندر اصول موجود ہیں, ٹھیک ہے, اصولی باتیں. اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, میڈیکل کالج کے اندر جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, میڈیکل کالج کے ٹیچرز کون ہوتے ہیں, اس کا تو چلے جواب دے دیں نا, میڈیکل کالج کے اندر ٹیچرز کون ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نرسز آ کر کے نہیں پڑھاتی میڈیکل کالج میں, انجینئرز آ کے نہیں پڑھاتے, پروفیسر صاحب جو ہیں وہ انگلش کے پروفیسر میڈیکل کالج میں نہیں پڑھاتے, میڈیکل کالج کا ہر ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان سے جب ان کا کوئی اسٹوڈنٹ آ کر کے سوال کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس لیے سوال کر رہا ہوتا ہے, وہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کر رہا ہوتا ہے, رائٹ, کیونکہ وہ خود ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, ہے نا, وہ خود ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تاکہ وہ اور پیشنٹس کا پھر علاج کرے, اس کلینک چلائے, ہسپتال میں جاب کرے, ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر کہلائے, صحیح ہے. تو اس وجہ سے جو اسٹوڈنٹ آ کر کے ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتا ہے میڈیکل کالج کے اندر, یہ سوال عمومی نوعیت کے سوال ہوتے ہیں, اصولی سوال ہوتے ہیں, ठीक है ना, और कोई उन उसके इन सवालों के ऊपर एतराज नहीं करता कि तुमने गलत सवाल किया, तुम्हें तो डॉक्टर डॉक्टर साहब से सवाल नहीं करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर यही डॉक्टर साहब, मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, यही डॉक्टर साहब क्लिनिक में जाकर के बैठ जाएं, ठीक है, और क्लिनिक में हमारे आप जैसा कोई बंदा वहां चला जाए, ठीक है, उनकी डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर, और वहां जाकर के उनसे इस किस्म का कोई सवाल करें जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर उनसे सवाल करते थे, वो सवाल अब मैं जाकर के उनसे क्लिनिक में करना शुरू कर दूं, ठीक है, तो इस सवाल को सही कहा जाएगा कि गलत कहा जाएगा? अच्छा, मैं वहां पे गया किस नियत से हूं? मैं डॉक्टर साहब से दवा लेने के लिए गया हूं, मैं उनसे इलाज करने के लिए गया हूं, ठीक है। अब मैं वहां जाकर के पहेलियां भुजवाऊं उनसे, राइट, कि जी अगर किसी के आंख के ऊपर ये ऐसा दाना निकल आए तो उसका क्या मतलब होता है, और अगर जो है ना वो किसी के मेरे नहीं, किसी के अगर पैर में ऐसे दर्द हो रहा हो तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, तो जरा बताए ना सही, इतना तो पता है सबको कि डॉक्टर साहब का जवाब क्या होगा, जरा जवाब बता दें, इतना तो पता होगा आप लोगों को, कुछ तो माशाल्लाह डॉक्टर्स भी हैं क्लास में, इनको तो आवाज नहीं आ रही जी, जिनको आ रही है आवाज, इन्होंने किसी ने लिखा आवाज नहीं आ रही, तो खैर जिनको आ रही है वो तो जवाब दे सकती है ना, कि अगर इस किस्म का सवाल जा करके मैं डॉक्टर साहब से उनके क्लिनिक में करूंगा तो डॉक्टर साहब का क्या जवाब होगा? आप लोग तो कभी डॉक्टर के पास गई नहीं होंगी सारी जिंदगी, क्या जवाब होगा डॉक्टर का? ये जगह इन सवालात की नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी जवाब हो सकता है कि आप मेरा टाइम जाया कर रही हैं, आप मेरा टाइम जाया कर रहे हैं, ठीक है, ये तो मेरे क्लिनिक का टाइम है, तो आप मुझसे मेडिकल साइंस पढ़ने की कोशिश ना करें, आप मुझसे अपना मसला बयान करें कि आपको कहां पर दर्द है, राइट, या आपको क्या सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आप मुझे अपनी बात करें ना, आप ये उमूमी बात आकर के क्यों मुझसे पूछ रही है, तो मेरे क्लिनिक का टाइम है, ठीक है ना, ये मैं क्लास तो नहीं आपको पढ़ा रहा, मैं कोई मेडिकल सेमिनार तो नहीं दे रहा आपको बैठ करके, ठीक है ना, यहां पर तो भाई मरीजों ने आना है, मरीजों ने आकर के अपने जाती अहवाल बयान करने, ठीक है, तो आप अपने जाती अहवाल बयान करें ना कि जी आप ये काम कर रही हैं, क्या ये काम करना आपके लिए सही है कि नहीं है, राइट, क्यों, इसलिए कि यहां पर यही डॉक्टर साहब जो हैं ये बैठ करके इल्म नहीं पढ़ा रहे हैं, यही डॉक्टर साहब हैं यहां पर बैठ करके ये इलाज कर रहे हैं, और आप उनके क्लिनिक में इलाज करवाने के लिए आए हैं, ठीक है, तो जो शेख होता है ना, उस शेख का काम होता है इलाज करना, शेख जो होता है वो टीचर नहीं होता, हाँ टीचर की कैपेसिटी के अंदर अगर वो क्लास पढ़ा रहा है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्टूडेंट के तौर पर उसके साथ हैं, तो फिर वो उनके साथ एज अ टीचर भी बिहेव कर सकता है, ठीक है, लेकिन जब कोई उसके पास कुछ पूछने के लिए आता है ना इस्लाह की खातिर, तो उसके लिए जरूरी है कि वो एग्जैक्ट अहवाल बयान करे, ठीक है, अपने बारे में बात करे, या अगर किसी और के बारे में पूछ रहा है कि जी मैं अपने किसी फैमिली मेंबर के बारे में पूछ रहा हूं कि उसके उसके ये सिम्टम्स हैं, तो अब बताएं कि जी इस सिस्टम यानी इन सिम्टम्स के लिए क्या करना चाहिए, हमें उसके इलाज का कैसे इंतजाम करना चाहिए, ठीक है, तो बंदा एक ही होता है, लेकिन उसकी जो जो प्लेस है ना, जिस प्लेस के अंदर आप सवाल कर रहे हैं, उस प्लेस की वजह से सवाल की नौयत बदल जाती है, ठीक है, तो इस वजह से ना जो जिन्होंने इस्लाही ताल्लुक बनाया है ना, तो वो आकर के पहेलियां नहीं भिजवाया करें, ठीक है, कि ऐसा हो तो फिर क्या करना चाहिए, वैसा हो तो फिर क्या करना चाहिए, अपने बारे में सवाल करें कि मैंने ऐसा सब किया है, मुझसे ये गलती हो गई है, या मैं जो है ये काम करना सोच रही हूँ, ठीक है, तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये इस्लाह वाला सिलसिला है, ये जो है ना ये पीएचडी कराने वाला सिलसिला नहीं है, ठीक है, उसके लिए हमने क्लासेस का इंतजाम रखा हुआ है, तो उसके लिए फिर या तो क्लास में सवाल करें, या ये कि पहले सवाल में बता दें कि ये आप एक किसी जगह पढ़ाने के लिए सवाल कर रही हैं, ठीक है, या ये जो है ना वो आप इल्मी सवाल कर रही हैं, ये अपने जात के लिए सवाल नहीं कर रही हैं, ठीक है, ताकि बात जो है ना वो सही से समझ में आ सके और उसको सही से समझाया जा सके, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो बात हो गई थी कि जनरल चीज़ क्या होती है और स्पेसिफिक चीज़ क्या होती है। जनरल मामला अलग होता है, उसको अलग तरीके से डील किया जाता है, और स्पेसिफिक मामला जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनके लिए या तो दौरे हाजिर के उलमा से सवाल फतवा लेना होता है, या अपने शेख के साथ अपने जाती अहवाल बयान करके फिर उससे जो है वो हिदायत लेनी होती है, ठीक है। अब इसके आगे फरमाते हैं कि जो अगली आयत थी कि ये लोग कहते हैं इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, कि हम तो महज खुदा की रजामंदी के लिए खाना खिलाते हैं, ना हम तुमसे इसका अमली बदला चाहते हैं और ना इसका कौली शुक्रिया चाहते हैं, और हम खुदा की रजामंदी के लिए इस वास्ते तुमको खाना खिलाते हैं कि हम अपने रब की तरफ से एक सख्त और तल्ख दिन का अंदेशा रखते हैं। इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, कि हम खौफ खाते हैं अपने रब की तरफ से एक ऐसे दिन की कि ये जो कि बहुत हार्श होगा, अबूसन का मतलब बहुत ही मुश्किल वाला दिन होगा, कयामत का दिन, कम तरीरा बहुत ही ज्यादा यानी तकलीफ देह होगा, डिस्ट्रेसफुल इसका तर्जुमा किया जाता है अंग्रेजी के अंदर कम तरीरा का, ठीक है। तो उदासी वाला दिन जैसे उन्होंने तर्जुमा किया, सख्ती वाला दिन तर्जुमा किया, इस तरह से उर्दू में यानी मतलब यही है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिन होगा कयामत का दिन, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाते हैं कि फवकाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिक अल्यौमी, तो अल्लाह ताला उस दिन के शर को इनके ऊपर से उठा लेगा, हटा देगा उस दिन की सख्ती को, तकलीफों को, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं वो शर होती हैं इंसान के लिए। वलक्काहुम नज़रतन व सुरूरा, और मुलाकात करवा देगा इनकी ताजगी के साथ, नज़रतन यानी एक बहुत ही खुशगवारी होगी, सुरूरा खुशी होगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला इनकी इन चीजों से मुलाकात करवा देगा, यानी ऐसे हालात पैदा कर देगा कि जिसके अंदर इनको ताजगी और खुशवक्ती मुयसर आ जाएगी, हालांकि बाकी सारी की सारी मखलूक इंतहाई मुश्किल के अंदर होगी, ठीक है। तो ये कौन सी जगह होगी कयामत के दिन? ये होगा अल्लाह ताला के अर्श के साए वाली जगह, ठीक है। क्योंकि अर्श के साए के बारे में जो सही हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 लोग बयान फरमाए कि जिनको अर्श का साया नसीब होगा, तो आपके लिए उसकी भी एक याद दहानी करा देते हैं कि अर्श के साए के लिए 7 लोग कौन होंगे। एक तो होगा एक ऐसा हाकिम जो कि इंसाफ के साथ फैसले करता था अपने अवाम में, इंसाफ के साथ, ठीक है, पहला शख्स। दूसरा एक ऐसा नौजवान जो कि अल्लाह की इबादत करते करते बड़ा हुआ हो, ठीक है, यानी नेकी में वो शुरू से लगा हुआ हो, ठीक है, हत्ता कि वो उसकी परवरिश ही नेकी के अंदर हुई हो। तो अब हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारी औलादें इनमें से हो, ठीक है। तो हम अगर अपनी औलादों की अच्छी तरबियत करेंगे, दीनी ईमानी तरबियत करेंगे, तो वो इस दूसरे किस्म के लोगों के अंदर शामिल हो जाएंगी, ठीक है, जो कि इबादत करते करते बड़े हुए हैं और इनको अर्श का साया मिलेगा, ठीक है। तीसरा शख्स वो जिसका के दिल मस्जिद के साथ अटैच्ड हो, मस्जिद के साथ लगा हुआ, अजीब बात फरमाई, दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ, ठीक है। यहां पे ये भी फरमा सकते थे जो कि मस्जिद में रहता हो, जो कि हर वक्त मस्जिद जाता हो, लेकिन अजीब अल्फाज अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत वसीह हो गया, क्योंकि अगर सिर्फ मस्जिद में रहने वालों का जिक्र होता, ठीक है, अगर हर वक्त हर नमाज मस्जिद में पढ़ने वाला ये वाली शर्त लगा दी जाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती, इसलिए कि हर शख्स के लिए मस्जिद में हर वक्त जाना मुमकिन नहीं होता, ठीक है ना, मस्जिद में रहना एतकाफ हर वक्त करते रहना ये मुमकिन नहीं होता, ठीक है ना, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं इंसान की कि जिसकी वजह से मस्जिद के अंदर जाकर के हर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, दूर मस्जिद होती है और रीजंस हो सकते हैं, ठीक है ना। मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने की जो वजूबियत है ना, वाजिब होना, वो मर्दों पर है किस शर्त के साथ? कि अजान की आवाज बगैर लाउड स्पीकर के उनकी कानों में आती हो, अजान की आवाज बगैर लाउड स्पीकर के कान तक अगर पहुंच गई तो मर्द के ऊपर वाजिब हो गया मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना। अब अगर वो मस्जिद में जाकर नहीं नमाज पढ़ेगा तो वाजिब छोड़ने का गुनाह होगा, ठीक है, ये मर्दों को नहीं बताइएगा वरना उनके लिए तो बड़ी फिर तफरी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये आप लोगों के लिए है, ख्वातीन की क्लास है ना। क्यों क्यों बता रहा हूँ मैं ख्वातीन को, वो इसलिए कि बहुत सारी जो नेक ख्वातीन होती हैं ना उनको ये बात नहीं पता होती, तो इस वजह से ना वो अपने शौहरों के पीछे और अपने बच्चों के पीछे हाथ धो के इस वजह से पड़ी रहती हैं कि वो मस्जिद क्यों नहीं जाते। चले बच्चे तो ठीक हैं, वो छोटे होते हैं, माँ को चाहिए कि मस्जिद डालने की आदत डाले, और बच्चों की इसलाह करना ये माँ की जिम्मेदारी होती है, लेकिन शौहर के साथ तो आप ये नहीं कर सकती ना, शौहर की इसलाह करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये बात याद रखें, शौहर की इसलाह करना बीवी की जिम्मेदारी नहीं होती है, उसके साथ खैरख्वाही का मामला करना, उसके साथ वफादारी का मामला करना ये अलग चीज होती है, और उसको ठीक करना, उसकी गलतियों को दूर करना ये शौहर ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ इसको भी जिम्मेदारी समझा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जब शौहर साहब मस्जिद नहीं जा रहे होते हैं ना तो बीवी जो है वो जो नेक बीवियां होती हैं माशाल्लाह इबादत गुजार, तो वो फिर उनके पीछे पड़ जाती हैं, ठीक है ना, और वो पीछे पड़ने से फायदा कुछ नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है, वो शौहर जो है वो उनसे भी तंग आ जाता है और दीन से भी कुछ शौहर फिर तंग आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये उनके लिए वाजिब नहीं है, तो बात समझनी चाहिए कि मस्जिद में जाना कब वाजिब हो जाता है। तो अगर ऐसा मामला आपको नजर आ रहा हो कि भाई उन तक आवाज पहुंच रही है फिर भी मस्जिद नहीं जा रहे, तो उनको आप खैरख्वाही के लिए कोई अच्छा बोल बोल दें, या कोई हदीसे मुबारक जो है वो उन तक पहुंचा दें किसी तरीके से, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए से, ठीक है ना। लेकिन उनके सामने डंडा लेकर के ना खड़े हों, फिर भी डंडा लेकर ना खड़े हों, ठीक है ना। और फिर इस बात को भी समझें कि खुद भी डिप्रेशन में मुबतला होने की जरूरत नहीं है कि मेरे शौहर साहब तो मस्जिद नहीं जाते, वो तो घर में पड़े रहते हैं, घर में नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनके ऊपर वाजिब है ही नहीं मस्जिद में जाना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मर्दों के ऊपर जमात की नमाज पढ़ना वाजिब है, मस्जिद में जाना एक अलग चीज होती है, जमात की नमाज पढ़ना एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो जमात की नमाज जो है वो किसी दूसरे मर्द के साथ मिलकर के जमात हो जाती है, ठीक है। हत्ता कि वो नमाज से ये भी सुना कि अगर कोई दूसरा मर्द ना भी मिल रहा हो तो महरम औरत के साथ ही जमात कर ले, बीवी के साथ कर ले, बहन के साथ कर ले, बेटी के साथ कर ले जो बालगा है, राइट। तो जमात किसी ना किसी दर्जे में कम से कम कुछ तो मिल जाएगी ना, तो जमात वाजिब है मर्द के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आपको फिक्र करने की जरूरत भी है ना तो वो जमात की फिक्र करने की जरूरत है, और मस्जिद की फिक्र करने की जरूरत कब है, जबकि आवाज पहुंचती हो अजान की, ठीक है। तो खामखा अपने आप को डिप्रेशन में मुब्तला कर लेना और किसी के पीछे जो है वो हम जैसे डंडा लेके पड़ जाते हैं ना, तो इस पढ़ने से क्योंकि हमें नुकसान होता है, डिप्रेशन से भी नुकसान होता है, एंग्जाइटी से भी नुकसान होता है, तो इस वजह से ना कुछ ये तफसीलात अगर आपको पता हो तो इंशाल्लाह खामखा जो है वो अपना काम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद बहरहाल एक तो ये बात आपको बता दी, दूसरी ये कि भाई दीन के अंदर ना कुछ और चीजें होती हैं जो कि ज्यादा जरूरी होती हैं, ठीक है ना, जो कि वाकई वाजिब हैं। तो अगर फिक्र करनी ही है तो उनकी फिक्र करें जो कि वाकई वाजिब हैं, जिनके छूटने से जो है वो गुनाहगार होता है बंदा। हमारे चूंकि प्रायोरिटीज मिक्सअप हुई हुई होती है ना, तो जो वाजिब नहीं होती है उनकी ज्यादा फिक्र करना शुरू हो जाते हैं, और जो वाजिब होती है ना उनकी हमें परवाह ही नहीं होती, ठीक है ना। तो इस वजह से इन जरूरी होता है ना, इस वजह से आपको ये बात बताइए। अच्छा, तो इसके बाद फिर ये तो हो गए तीसरे साहब ना, मस्जिद में जिसका दिल लगा हुआ हो, बेशक वो जाके नमाज ना पढ़ पा रहा हो मस्जिद के अंदर, मस्जिद की फजीलत जो कि 25 गुना होती है, 27 गुना होती है, वो फजीलत ना पा रहा हो, लेकिन उसका दिल मस्जिद में लगाओ कि काश के मुझे मौका मिल जाए मैं मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ूं, राइट। अगर मेरी ये जिम्मेदारियां ना होती, अगर मेरा घर मस्जिद के करीब होता या कोई ऐसी जो है वो प्रॉब्लम्स ना होती, तो मैं यकीनन मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ता। इसको कहते हैं दिल मस्जिद के अंदर लगा हुआ, जिस्म बेशक बाहर हो दिल मस्जिद में लगा हुआ, ठीक है। तो ऐसा शख्स जो होता है ना, ये बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स होता है। और दूसरा शख्स जो है, एक होता है जो कि हर मस्जिद हर नमाज जो है मस्जिद में जाकर पढ़ तो रहा है, लेकिन दिल उसका मस्जिद के बाहर रहता है, दुकान में रहता है, जॉब पे रहता है, लेकिन जिस्म जो है वो मस्जिद के अंदर रहता है, ठीक है ना। तो ये शख्स ज्यादा बेहतर है कि वो शख्स ज्यादा बेहतर है कि जिसका दिल जिसका जिस्म मजबूरी की वजह से मस्जिद के बाहर हो, लेकिन दिल उसका अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मस्जिद के अंदर हो, कौन सी वाली सिचुएशन बेहतर है, कौन सा वाला इंसान बेहतर है? उम्मीद है कि आप सबको इसका सही जवाब मालूम ही होगा। चौथा शख्स, दो लोग जो कि एक दूसरे से मोहब्बत की वजह से मुलाकात करते हैं, ठीक है, और मोहब्बत ही की वजह से की बुनियाद पर ही यानी मिलते हैं, और मोहब्बत ही की बुनियाद पर एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मिलते हैं और अल्लाह की मोहब्बत की खातिर ही जुदा होते हैं। ठीक है, यानी किसी शरी मकसद से मिलते हैं और शरी मकसद ही को पूरा करने के लिए फिर जुदा होते हैं ताकि जाकर के उस मकसद को पूरा कर सकें। अगर हमेशा दोनों साथ रहेंगे तो फिर बहुत सारे काम जो कि इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर सकेंगे। तो इनका मिलना, इनका जुदा होना, ये सब अल्लाह की मोहब्बत की वजह से होता है। तो ये भी कयामत के दिन अर्श के साए में होंगे। ठीक है, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, पांचवा, एक ऐसा मर्द कि जिसको एक अच्छे इज्जतदार घराने की खूबसूरत औरत अपनी तरफ माइल करे और वो कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। ठीक है, क्योंकि ऐसी औरत की के दावत को ना ठुकराना इंसान के लिए, मर्द के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। वो अपनी तरफ खुद बुला रही हो, ठीक है, और ये कह दे मैं अल्लाह से डरता हूं, यानी खुदा के खौफ की वजह से उसकी इस दावत को ठुकरा दे। ठीक है, अब इसकी तफसील तो बहुत सारी हो सकती है कि इसका मतलब क्या होता है, कि यानी खूबसूरत का तो सबको मतलब पता है, लेकिन अच्छी खानदान वाली का मतलब। बहरहाल, तो ये शख्स जो है ये भी क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा। फिर इसके बाद छठा, कि वो शख्स जो कि अल्लाह की खातिर खर्च करता है, सदका देता है और लोगों से ऐसे छुपाता है कि उसके दाएं हाथ को पता नहीं लगता कि उसके बाएं हाथ ने सदका दिया है, छुपा करके अल्लाह की रजा की खातिर सदका देता है। और ये जो आयत है इसके अंदर अंदर उन्हीं लोगों का तस्करा है। ठीक है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम, हमें कोई दुनियावी जजा नहीं चाहिए, यानी छुप करके सदका करते हैं, दुनिया वालों से छुपा करके लोगों की मदद किया करते हैं। तो ये भी अर्श के साए में होंगे। तो जब अर्श के साए में होंगे तो यही तो है, फवाकाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमी, ठीक है, कि कयामत के दिन की सख्तियां जो हैं वो उनके ऊपर नहीं होंगी। ठीक है, फिर सातवां और आखिरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो कि तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करता है इस तरह से कि उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। ठीक है, अल्लाह की याद की वजह से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये सात लोग कयामत के दिन VIP लाउंज में होंगे। ठीक है ना, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, बल्कि बिजनेस क्लास की तो क्या हैसियत, फर्स्ट क्लास उस जमाने की, उस वक्त की, उस लाउंज के अंदर होंगे। और हजारों साल भी बैठ करके अगर इंतजार करते रहे ना तो भी उनको कोई परवाही नहीं होगी। ठीक है, और बाकी लोग बाहर होंगे और उनके साथ फिर क्या शर हो रहा होगा, तो अल्लाह ताला हमें इनमें से बना दे। 25-27 साल फजीलत इज विद प्रेइंग इन मस्जिद और प्रेइंग इन कॉन्ग्रीगेशन, मस्जिद, इसका ताल्लुक मस्जिद के साथ है। ठीक है ना, यानी मस्जिद क्या चीज होती है, वो खास जगह के जिसको डेडिकेट कर दिया गया हो मस्जिद कह करके। ठीक है, तो इस वजह से जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं ना, जिनको मस्जिद की इमारत कहते हैं, उसके अंदर से असल मस्जिद क्या होती है, सिर्फ वो जगह कि जहां पर 5 वक्त बाजमात नमाज होती है, जुमे की नमाज एक्चुअली जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पर एतिकाफ हो सकता हो, रमजान मुबारक का एतिकाफ उस जगह में हो सकता हो। ठीक है, तो अब उस इमारत के अंदर जो बाथरूम्स होते हैं वो मस्जिद नहीं होते। अक्सर जो औरतों की नमाज पढ़ने की जगह होती है ना, वो भी मस्जिद में दाखिल नहीं होती है। ठीक है, औरतों की नमाज पढ़ने की जगह क्यों दाखिल नहीं होती है, उसकी वजह ये होती है कि औरत कभी किसी मजबूरी की वजह से, जैसे कुछ औरतें खानदान की साथ जा रही थी तो कुछ ने नमाज पढ़नी थी तो वो जाकर के अंदर नमाज पढ़नी है, लेकिन कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो कि नमाज नहीं पढ़ सकती, हैज के अयाम चल रहे हैं, तो वो फिर कहाँ बैठें, तो वो फिर वहां जाकर के बैठ सकती हैं, बेशक नमाज ना पढ़ें, लेकिन अगर वो मस्जिद होती तो ये औरतें फिर अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती, क्योंकि हैज के साथ मस्जिद में दाखिल होना, और मर्द भी एहतराम की हालत में मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है, उस हैज की हालत में औरतें दाखिल नहीं हो सकती, तो ऐसी जो जगह होती है ना जहाँ पे औरतें नमाज पढ़ती हैं, तो फिर उन जगहों को मस्जिद में डिफाइन नहीं किया जा रहा होता। ठीक है, तो ताकि सारी औरतें जो है वहां पे आ सकें। अब औरतों के लिए फजीलत तो है भी नहीं मस्जिद के अंदर, ये 25-27 टाइम वाली फजीलत तो औरत के लिए है ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि जी चलो हमें तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो हम इस फजीलत से महरूम रह जाएंगे। भाई आपके लिए तो फजीलत है ही नहीं मस्जिद के अंदर, आपको ही महरूम नहीं रह जाएंगे, आपने तो फर्ज नमाज अदा करनी है, अदा करें, घर वापस जाएं, आपके लिए फजीलत तो घर के अंदर है। ठीक है ना, वो तो उम्मीद है कि सबको पता ही होगा वो हदीस की तफसील। ठीक है, तो ये हो गया फवाकाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौमी की बात। फिर उसके बाद फरमाते हैं वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतं व हरीरा, और उनकी जजा उनके इस सब्र और इस्तेकामत की वजह से जन्नत है, और जन्नत की एक नेमत का यहाँ पे तذکرہ कर दिया इस आयत में, पोशाक रेशमी, रेशमी पोशाकें, सिल्क, जन्नत का सिल्क, उसकी पोशाकें इनको मिलेंगी। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, खुलासे तफसीर को कि और उनकी पुख्तगी यानी इस्तेकामत फिद दीन, सबर का मतलब क्या होता है, इस्तेकामत फिद दीन यानी गुनाहों से बचना, नेकी के रास्ते के ऊपर कायम रहना, डटे रहना, ठीक है, और एक्सट्रीम से बचना यानी ना 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 एक तरफ अफरात में जाना ना तफरीत में जाना, बल्कि सिराते मुस्तकीम जो दरमियानी रास्ता होता है, ये दरमियानी रास्ता हमारा डिफाइन किया हुआ दरमियानी रास्ता नहीं, क्योंकि हमारा डिफाइन किया हुआ दरमियानी रास्ता क्या होता है, दीन और दुनिया साथ साथ, ये हमारा डिफाइन किया हुआ दरमियानी रास्ता होता है, ठीक है ना, दुमड़ी ना जाए ईमान बेशक जाए, ये हमारा दरमियानी रास्ता है, ये हमारी डेफिनेशन है, ठीक है, ईमान जाए दुमड़ी ना जाए, ठीक है ना, वो मेरी दोस्तियां ना जाएं, मेरी सहेलियां ना जाएं, राइट, और मेरे जो है ना वो प्रेज करने वाले ना जाएं, बेशक कुछ फराइज चले जाएं तो कोई बात नहीं, ये दरमियानी रास्ता है, लेकिन ये किसका डिफाइन किया हुआ, ये हमारा डिफाइन किया हुआ दरमियानी रास्ता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला किस दरमियानी रास्ते की बात करते हैं, एहदिना सिराकल मुस्तकीम, और फिर इस दरमियानी रास्ते की तारीफ क्या करते हैं, सिराकल्लजीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का डिफाइन किया हुआ दरमियानी रास्ता, यानी उन लोगों ने अपने लिए जो डिफाइन किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की वजह से, जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ, ठीक है, अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ठीक है ना, ना कि वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह ताला का गजब हुआ और जो रास्ते से गुमराह हो गए जो लोग, ठीक है ना, उनका डिफाइन किया वो रास्ता दरमियानी रास्ता नहीं होता, ठीक है। तो अब ये दरमियानी रास्ता सीखने के लिए हमें चाहे ना चाहे मौलवियों के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि मौलवियों को ये तफसीलात पता है कि ये अनअमत अलैहिम कौन लोग होते हैं और इन लोगों ने दीन इस्लाम को कैसे समझा था, क्या क्या फरमाया कि ऐसे काम करना है ऐसे काम नहीं करना, ये सारी तफसीलात तो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के पास तो नहीं हो सकती है ना, एक बिजनेस कंसल्टेंट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पास तो ये तफसीलात नहीं हो सकती, ठीक है ना, इन तफसीलात के लिए तो उम्रें लगानी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये दरमियानी रास्ता, इसके ऊपर चलना इस्तेकामत फिद दीन कहलाता है और इसी को सबर कहते हैं, ठीक है। तो इनके सबर की वजह से यानी सबर के बदले में उनको जन्नत और रेशमी लिबास देगा, इस हालत में कि वो वहां जन्नत में मसहरियों पर आराम और इज्जत से तकिए लगाए हुए होंगे यानी टेक लगा के बैठे हुए होंगे, ठीक है। तो फरमाया कुरान ने मुत्तकीना फीहा अलल अराइक, यानी जन्नत के अंदर जो इनको तकिए गौ तकिए और माशाल्लाह मैट्रेसेस दिए गए होंगे और मैट्रेसेस के साथ जो है जबरदस्त किस्म के कुशंस दिए गए होंगे, उनके ऊपर टेक लगा करके ये बैठे हुए होंगे, ला यरौना फीहा शमसं वला जमहरीरा, वहां पर जो ये इस मजे से बैठे हुए होंगे तो वहां इनको ना तपिश महसूस होगी, शम्स सूरज की गर्मी, ठीक है, यानी कोई भी गर्मी प्रोड्यूस करने वाली चीज की तपिश इनको महसूस नहीं होगी, वला जमहरीरा, जमहरीरा किसको कहते हैं, फ्रीजिंग कोल्ड यानी इतनी ठंडक कि जो कि आपको जमा दे, फ्रॉस्ट बाइट हो जाए उससे आपको, ठीक है। तो ऐसी ठंडक जैसे कि घर के अंदर हम एक मोतदिल एयर कंडीशन का टेम्परेचर रखते हैं ना कि जिसके अंदर हर बंदा जो होता है वो इत्मीनान से होता है, ठीक है, जन्नत के अंदर वैसी ठंडक होगी जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने आग को कूनू बर्दम व सलामा बना दिया था, क्या कहा था ना, हुक्म दिया था कि बर्दम यानी ठंडी भी हो जाओ और सलामती वाली ठंडी हो जाओ, ये ना हो कि मेरे खलील को तुम्हारी ठंडक की वजह से तकलीफ होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ऐसी ठंडक जो है ना ये जन्नत में होगी, लेकिन फ्रीजिंग कोल्ड जन्नत में नहीं होगी, क्योंकि ये फ्रीजिंग कोल्ड जो है ये जहन्नुम की सजाओं में से एक सजा है, जहन्नुम की सजाओं में से, हत्ता के पिछले साल मिड वेस्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स के मिड वेस्ट में, शिकागो और मिशिगन और ये जो लेक ऑन्टारियो कनाडा के अंदर है, तो टोरंटो की सिटी, ये जो पूरा एरिया है ना नॉर्थ ईस्ट और मिड वेस्ट का जो एरिया कहलाता है, यहाँ पर इतनी ठंडक पड़ी कि लोग मरना शुरू हो गए ठंडक की वजह से। वो लोग जो कि हर साल इस ठंडक से गुजरते हैं और उनके पास पूरे इंतजाम होते हैं इसके, लेकिन ऐसे लोग मरना शुरू हो गए, चीजें बंद हो गई और इतनी शदीद ठंडक पड़ी थी कि लोगों ने उसको, जो मुसलमान थे जिन्होंने बात पढ़ी हुई थी कुरान में या हदीस में, उन्होंने कहा कि ये तो लगता है कि वो वाली ठंडक है जिसका कि जिक्र कुरान और हदीस के अंदर है, जहन्नुम के अजाबों वाली ठंडक। ठीक है, तो जमहरीरा ऐसी ठंडक को कहते हैं, तो वहां पर ये भी नहीं होगी। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लिलत क़ुतूफुहा तज़लीला। अच्छा, इनके ऊपर झुकी हुई होंगी छाओं यानी साए, शेड्स होंगे इनके ऊपर। ठीक है, कुतूफुहा और जुल्लिलत कुतूफुहा, और जो उसके गुच्छे होंगे वो भी झुके हुए होंगे। ठीक है, तो शेड की भी चीजें इनके ऊपर मौजूद होंगी, और गुच्छे, गुच्छे मतलब फ्रूट्स के जो जिन जैसे टहनियां होती हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बड़े बड़े गुच्छे मौजूद होते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे, आपने अंगूर खरीदते हैं लोग, ठीक है, तो वो गुच्छे की शक्ल में होता है ना, तो ये गुच्छे जो हैं वो लटके हुए होंगे, इजीली एक्सेसिबल, कि बस ये हाथ अपना थोड़ा सा आगे करेंगे और वो गुच्छों से जो फ्रूट्स होंगे इनके हाथों में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे उनके ऊपर झुके हुए होंगे। तो फरमाया कि ये हालत होगी कि वहां के यानी जन्नत के दरख्तों के साए इन बहश्तियों पर झुके हुए होंगे, इन जन्नतियों पर यानी करीब होंगे, और साया असबाब तनाउम में से है। ठीक है, तो साया का क्या कॉन्सेप्ट है जन्नत के अंदर, क्योंकि जन्नत में तो सूरज ही नहीं होगा, साया तो उस वक्त अच्छा लगता है ना जबकि सूरज हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर साया का क्या मतलब है, फरमाया कि जन्नत में आफ्ताब महताब तो होंगे नहीं, यानी ना सूरज होगा ना चांद होगा, तो फिर साया का क्या मतलब है, तो हो सकता है कि दूसरे अजसाम नूरानिया की रोशनी से साया मकसूद हो। ठीक है, कि भाई बहुत सारी और भी तो चीजें ना जिनसे बहुत ज्यादा नूर निकलता है, तो बंदा जो है वो उस नूर से कभी तो लुत्फानंदोज होता है और कभी चाहता है कि यार मुझे जरा डार्कनेस चाहिए। ठीक है ना, अब ये नूर बस इस वक्त बगैर नूर के ज्यादा बेहतर है, तो उस नूर से साया करने के लिए ये चीजें मौजूद होंगी। ठीक है, तो फायदा साया का गालिबन ये है कि हालात बदलते रहें, एक हाल कितने भी आराम और लज्जत का हो आखिरकार उससे तबीयत उकता जाती है। ठीक है, देखिए अल्लाह ताला ने हमारा जो मिजाज बनाया, अल्लाह ताला हमारी तबीयत से, मिजाज से सबसे ज्यादा वाकिफ है, तो अल्लाह ने हमारा मिजाज बनाया है कि हम एक सी चीज हो ना उससे यानी तंग आ जाते हैं। ठीक है, उससे जो है वो उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ये बोरियत हमारे मिजाज के अंदर है, तो इस वजह से हालात का तब्दील होना ना, चेंज, ये चेंज जो है ना ये हमारे लिए, हमारी तबीयत के लिए जरूरी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह की खातिर बोरियत बर्दाश्त करी होगी, ठीक है ना, अपने मिजाज को दबाया होगा और शरीयत को फौकियत दी होगी अपने मिजाज के ऊपर, तो अल्लाह ताला उनकी मिजाज पुरसी करेंगे जन्नत के अंदर, मिजाज का ऐसे ख्याल रखेंगे कि इवन अपनी जन्नत की नेमतें भी जो है ना वो भी अदलते बदलते रहेंगे, क्योंकि मेरे बंदे हैं भाई, ये इतनी तकलीफें उठा करके अपने मिजाज को, तबीयत को, अपने नफ्स को मार करके यहाँ पर आए हैं, तो अब मैं इनको, इनका ख्याल रखूं, इनकी तबीयत का ख्याल रखूं, राइट? कितना करीम परवरदिगार है कि उसने जन्नत की नेमतों के अंदर भी जो है ना वो तब्दीली रखी है। ठीक है, कभी नूर से हमें हमें एंटरटेन करेंगे, कभी जो है वो नूर से साए में डाल करके हमें एंटरटेन करेंगे। ठीक है, तो भाई ये है जन्नत, तो क्यों खामखा इसका सौदा करते हैं घटिया चीजों की वजह से, राइट? चंद इस दुनिया की चंद यानी चंद जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, खिलौने, खिलौने इस दुनिया के, इन खिलौनों की वजह से हम क्यों अपने रब से जो है ना वो अपना मामला खराब कर लेते हैं, नाशुक्री, बेसब्री, तो उल्टी सीधी बातें कहना, ठीक है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो मिजाज वाली बात है ना, ये मिजाज पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। ठीक है, तो नेगेटिव के अंदर मिजाज का मामला क्या हुआ कि नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो वो ये होगा कि अगर किसी को कोई तकलीफ दी जा रही हो, ठीक है, तकलीफ दी जा रही हो, सही है, तो वो तकलीफ अगर वो बहुत ज्यादा सहता है ना, कंसिस्टेंटली लंबे अरसे के लिए सहता है, तो क्या होता है, वो तकलीफ उसके लिए आसान हो जाती है। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, ये शेर सुना होगा, ठीक है? तो किसी को याद है, हमने कुछ दिन पहले इसकी एक तो कुरान की आयत पढ़ी थी, ठीक है, कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, तो इस वजह से मुश्किलात भी एक जैसी नहीं रहेंगी बल्कि तब्दील करते रहेंगे। तो अब ये किसकी बात हो रही है, ये किन लोगों की बात हो रही है कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला जो सजाएं डालेंगे वो सजाएं भी एक जैसी नहीं रहेंगी, राइट? क्योंकि अगर एक जैसी सजा रहेगी तो वो सजा भी आसान हो जाएगी, सहना आसान हो जाएगा, क्योंकि तबीयत है इंसान की, ठीक है? तो किसी को याद है वो वाली आयत कहाँ पढ़ी थी, चने सूरत का ही नाम, बड़ी तफसील थी उसके अंदर। जी क्या कॉन्सेप्ट था जहन्नुम के बारे में? लाबिसीना फीहा अहकाबा, कि ये जो तागीन होंगे ना, ये सरकश लोग दुनिया के अंदर जो अपनी तबीयत की मान के चला करते थे और शरीयत को जो है वो पसे पुश्त रखा करते थे, ठीक है ना, सरकश लोग, रिबेलियस लोग, राइट? ये लोग जो जहन्नुम में डाले जाएंगे ना, तो ये जहन्नुम के अंदर इनके साथ क्या होगा, ये अहकाबन इसके अंदर रहेंगे। तो इसकी तफसीरें बहुत सारी थी, ठीक है, अहकाबन का मतलब क्या है, क्या ये कोई लिमिटेड पीरियड है कि इस लिमिटेड पीरियड के बाद फिर उनको जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, तो उसमें एक तफसीर क्या थी, ठीक है ना, जो कि सबसे ज्यादा समझ में आने वाली तफसीर थी, वो ये थी कि अहकाबन का मतलब ये है कहने का कि ये एक किस्म की तकलीफ जो इनको जहन्नुम में पहुंचाई जाएगी वो एक हकब तक रहेगी, ठीक है ना, एक हकब यानी एक लंबे पीरियड के लिए उनके ऊपर एक किस्म का अजाब रहेगा, और जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा और दूसरा हकब स्टार्ट होगा तो अजाब की शक्ल तब्दील कर दी जाएगी, अजाब की शक्ल तब्दील कर दी जाएगी। ये नहीं कि उनको अजाब से निकाल लिया जाएगा और जन्नत में डाल दिया जाएगा, नहीं, काफिर मुशरिक को कभी भी जहन्नुम से नहीं निकाला जाएगा, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे, ठीक है? तो अहकाबन का मतलब यह था कि तब्दीली आती रहेगी, क्योंकि इंसान की तबीयत ऐसी है कि एक मुसीबत में भी अगर उसको आप लंबा सा डाल देना तो वो मुसीबत भी उसके लिए आसान हो जाती है, आदी हो जाता है उस मुसीबत का, ठीक है? तो उसी तरीके से जन्नत के अंदर जो नेमतें होंगी ना, ये नेमतें भी जैसे आपको पिछली क्लासों में बात हुई है कि कस्टमाइजेबल नेमतें होंगी, हमारी मर्जी से भी वो नेमतें फर्दर इम्प्रूव हो सकेंगी, तब्दील हो सकेंगी, और अल्लाह ताला भी नेमतों को तब्दील करते रहेंगे, कभी शेड में रखेंगे, कभी नूर में रखेंगे, कभी शेड में रखेंगे, कभी नूर में रखेंगे, ठीक है, जैसे कि शायद से मालूम होता है। आगे फरमाया, वयुताफु अलैहिम बि आनियतिम मिन फिद्दतिन व अकवाबिन कानत कवारीरा, और लोग लिए फिरते हैं उनके पास बर्तन चांदी के, ठीक है, यानी उनके तवाफ करते हैं, युताफु अलैहिम, उन पर तवाफ करेंगे, तवाफ करने का मतलब उनके चारों तरफ चक्कर काटेंगे, जैसे काबतुल्लाह के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो इन जन्नतियों के चारों तरफ इनके जो जो मुलाजिम होंगे, बल्कि मुलाजिम इनको कोई पेमेंट को थोड़ी करनी होगी, जो गुलाम होंगे, जो विलदान हों, जिनका आगे जिक्र भी आता है, ठीक है, तो ये जो लड़के होंगे या काम करने वाले जो भी मखलूक होगी ना, तो ये इनके चारों तरफ मौजूद रहेंगे, यानी जब इस किस्म की सिचुएशन होगी, जब इनको तन्हाई नहीं चाहिए तो खादिम मौजूद रहेंगे, और उनके पास चांदी के बर्तन होंगे, वह अकवाबिन, और ऐसे प्याले होंगे, कूब, कूब की जमा होती है अकवाब, और कूब का जो लफ्ज है ये अंग्रेजी ने अरबी से अडॉप्ट किया है, ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कप, कप्स, ठीक है, तो इनके पास कप्स होंगी, कप्स होंगे जो कि शीशे के बने हुए होंगे, कानत कवारीरा, ठीक है, शीशे के ये कप्स बने हुए होंगे, और ये शीशे कैसे होंगे, कवारीरा यानी ये ऐसे शीशे होंगे من فضتن قدروها تقدیرا, کہ یہ شیشے جو ہے نا یہ بھی چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے, یعنی ایسے سلور کپس ہوں گے کہ ان کو ان کی اتنی زبردست پالش ہوگی, اتنی بہترین ان کے اوپر پالش ہوگی کہ جس کی وجہ سے کہ یہ شیشے کی طرح نظر آئیں گے, اور یہ شیشہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ریفلیکٹو نہیں بلکہ یعنی مرر کی طرح کا نہیں بلکہ گلاس جیسے ہوتا ہے جس کے کہ آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ایکچولی شیشہ نہیں ہوگا, ایکچولی یعنی دنیا کے شیشے کی طرح کا شیشہ نہیں ہوگا بلکہ چاندی کا بنا ہوا شیشہ ہوگا, یعنی بہت ہی قیمتی شیشہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور قدروہا تقدیرہ کا مطلب کہ ماپ رکھا ہے ان کا ماپ, یعنی ان کی جو قدر ہے, ان کی جو کیپیسٹی ہے, کوانٹیٹی ہے نا, وہ پری ڈیٹرمنڈ کوانٹیٹیز ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ٹھیک ہے, کہ جیسے جیسے ان کو نعمتیں ملنی ہیں تو ان کے حساب سے یہ یہ پیالے ہوں گے. اچھا, اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے کہ ہر وقت ہر طرح بلا مشقت لے سکیں گے, اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لیے چاندی کے برتن لائے جائیں گے, اور آب خورے جو شیشے کے ہوں گے, آب خورے یعنی پیالے جو شیشے کے ہوں گے, اور وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوا ہوگا, یعنی اس میں مشروب ایسے انداز سے بھرا ہوگا کہ نہ اس وقت کی خواہش میں کمی رہے گی کہ پی لیا اور خواہش ابھی بھی پوری نہیں ہوئی, اور نہ اس سے بچے کہ دونوں میں بے لطفی ہوتی ہے کہ ابھی خواہش پوری ہو گئی ابھی بھی گلاس کے اندر موجود ہے, تو یہ بھی ایک بے لطفی والی کیفیت ہوتی ہے. اور چاندی کے شیشے کے یہ معنی کہ سفیدی تو چاندی جیسی ہوگی اور شفافی شیشے جیسی ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ شیشہ بھی ایکچولی ہوتا کیا ہے, یہ ایکچولی سینڈ مٹیریل ہوتا ہے, سینڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں نا جن کو کہ اس طریقے سے جوڑا جاتا ہے اور پھر ان کو پالش کیا جاتا ہے, پالش کیا جاتا ہے, اس کو سلیکا اسی وجہ سے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سلیکون یا سلیکا اسی سب سب جو ہے وہ ریت سے بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ چیز ہمارے یہاں شیشہ کہلاتی ہے. تو یہ جو مٹی کے ذرات سے بنے بنا ہوا شیشہ دنیا میں ہوتا ہے, جنت کے اندر ایسا شیشہ نہیں ہوگا بلکہ چاندی سے بنا ہوا شیشہ ہوگا. تو دنیا کی چاندی میں آر پار نظر نہیں آتا, اور شیشے میں یہاں ایسی سفیدی نہیں ہوتی, بس یہ ایک عجیب چیز ہوگی, یعنی ہمارا جو شیشہ ہوتا ہے اس میں سفیدی ایسی نہیں ہوتی جیسے چاندی کی سفیدی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے جو 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 چاندی ہوتی ہے ہمارے یہاں اس کے آر پار نظر نہیں آتا, لیکن جنت میں دونوں چیزیں ہوں گی, اس کے اندر چاندی بھی ہوگی اور آر پار بھی نظر آ رہا ہوگا, سبحان اللہ. تو یہ ایک عجیب چیز ہوگی, اور وہاں ان کو علاوہ جام شراب مذکورہ بالا جام شراب کے کہ جس میں کافور کی آمیزش تھی, اور بھی ایسا جام شراب پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. سونٹ کی آمیزش, سونٹ تو ہمارے یہاں بچپن میں ہماری والدہ کھلایا کرتی تھیں, وہ ادرک کے کچھ ریشے نکال کر کے اور اس کے اندر کچھ ملاتی تھیں, بہرحال وہ کیا چیز ہوتی تھی لیکن ادرک مجھے یاد ہے, تو وہ سونٹ کہتی تھی اس کو. تو سونٹ کی آمیزش ہوگی کہ انتعاش حرارت غریری نہیں حرارت غریزی یا غرزی اور منہ کا مزہ بدلنے کے لیے شراب میں اس کو بھی ملاتے تھے, ٹھیک ہے. اب چونکہ اس زمانے کے عربوں کو کچھ سمجھانا تھا نا کہ جنت میں تمہیں یہ یہ چیزیں ملیں گی, تو ان کی جو محسوسات چیزیں تھیں جن کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا, ٹیسٹ کیا ہوا تھا, تو ان سے قریب قریب چیزیں بتاتے تھے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ایکچولی اس کو کوانٹیفائی کر سکے, میٹیریلائز کر سکے اپنے ذہن کے اندر کہ اچھا ایسی چیزیں ہوں گی وہاں پر جن کو کہ ہم اس دنیا کے اندر تو بہت قیمتی سمجھا کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم بڑی بڑی قیمتیں پے کیا کرتے ہیں, پھر وہ ہمیں اتنی مشکل سے ملتی ہے اور تھوڑی سی ملتی ہے, تو جنت کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ انلمیٹڈ اماؤنٹ میں ہمیں ملیں گی اور بغیر کسی قیمت کے ملیں گی, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دیں, لیکن وہاں پہ جو نعمتیں ہوں گی وہ جنت کی وہ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں یعنی کتنی گنا بڑی ہوں گی, اور ان کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے اس دنیا کی نعمتوں کے اوپر, قیاس بھی نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے. اچھا, تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیا استعمال فرمائے, تو فرمایا کہ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. زنجبیل سونٹ کو کہتے ہیں, زنجبیل ڈرنک جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے, اور ملکوں میں بھی شاید ملتی ہو, خیر ہم نے جو خریدا تو ہم سے تو پیا ہی نہیں گیا اس کو, ٹھیک ہے, تو یہاں کی زنجبیل کا تو یہ حال ہے, کچھ لوگوں کو اچھی لگتی ہوگی جبھی تو انہوں نے مارکیٹ میں اس کو رکھا ہے, لیکن اب ہمیں یہاں کی زنجبیل نہیں پی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ جنت میں جو جنتی زنجبیل ہوگی وہ پلائیں گے, ٹھیک ہے. تو عینن فیہا تسمہ سلسبیلا, اس کے بارے میں کہتے ہیں ऐसे चश्मे से जो वहां होगा उनको पिलाया जाएगा, जिसका नाम वहां सलसबील मशहूर होगा। ठीक है, यानी ये जो शराब पिलाई जाएगी सोंठ की आमेजश वाली, तो वो उस चश्मे से जिसका नाम सलसबील वहां पर मशहूर होगा उसमें से पिलाई जाएगी। मजमूआ मकाम बाला और मकाम हाजा से मालूम होता है कि चश्मा मस्कूरा बाला की शराब में आमेजश काफूर की होगी, और इस चश्मा मस्कूरा माबाद की शराब में आमेजश जंजबील की होगी। वल्लाहु आलम बे असरार ही, अल्लाह ताला ही अपने इन छुपे हुए राजों को ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो दो दो किस्म की शराबों का तस्करा किया, एक वो जिसके अंदर काफूर की आमेजश होगी, ठीक है, जिसका कि पहले जिक्र हम पढ़ चुके हैं, और ये वाली शराब वो होगी जिसमें जंजबील की आमेजश होगी। ठीक है, वो जो पढ़ा था इन्नल अब्रारा यशरबून मिन कासन काना मिजाजुहा काफूरा, पांचवी आयत के अंदर काफूर वाली शराब का जिक्र पढ़ा था। ठीक है ना, तो ये चीजें किनको मिलेंगी, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर शराब से अपनी हिफाजत करी होगी। ठीक है, तो उनको फिर अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर शराब में पिलाने का वादा किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस शराब के साथ जो खसूसियत होगी वो आगे आ रही है गालिबन, हाँ आगे आ रही है। तो फरमाया कि वयतूफ अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, और फिरते हैं इनके पास लड़के विल्दान मुखल्लदून हमेशा रहने वाले। ठीक है, यानी जो इनके ये खादिम होंगे वो छोटे छोटे लड़के बच्चे होंगे, इनके बारे में कुछ रिवायात से पता लगता है कि ये यानी बच्चे होंगे जिनका जो कि अपने बुलूगत की उम्र से पहले ही दुनिया से चले गए। ठीक है, चाहे वो मुसलमानों के बच्चे हों चाहे वो काफिरों के बच्चे हों, ठीक है ना, उनके ऊपर बुलूगत अभी नहीं आई थी, इस वजह से शरीयत के अहकाम उनके ऊपर अभी नहीं लागू हुए थे, तो इस वजह से गुनाहों का इनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो ऐसे जितने भी बच्चे होंगे ना, इनको जन्नत के अंदर रखा जाएगा, और ये जन्नत के मजे भी उड़ाएंगे और जन्नतियों के लिए और यानी फायदे के भी सबब बनेंगे। अच्छा, खिदमत करेंगे लेकिन खिदमत से इनको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, उल्टा मजे उड़ा रहे होंगे, इन्होंने अमल तो नहीं किया ना कोई जन्नत वाले अमल, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ने इनको जहन्नुम में भी नहीं डाला कि भाई किस बात की सजा, इनका क्या कसूर है अगर ये काफिर के घर में पैदा हुए या फासिक फाजिर मुसलमान के घर में पैदा हुए, इनका तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है, तो इनको बिला कसूर जहन्नुम में तो नहीं डाल सकते, अल्लाह ताला तो रहीम करीम है और जुल्म अल्लाह ने अपने ऊपर हराम कर लिया है। ठीक है, तो अब इनको जन्नत में डालेंगे, लेकिन अमल तो नहीं किए थे इन्होंने कोई भी जन्नत वाले। ठीक है, तो अब जन्नत वाले अमल करने वाले तो इनके मास्टर्स होंगे और ये जो है वो उनके खादिम होंगे। ठीक है, ये एक इंटरप्रिटेशन ये आप कह सकते हैं, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये कोई खास ही किस्म की मखलूक होगी जो अल्लाह ताला वहां पर खास खिदमत के लिए जन्नतियों की पैदा फरमाएंगे। ठीक है, बहरहाल ये भी हो सकता है, और एक्चुअली इससे ज्यादा एक और ये है कि जो जन्नतियों के बच्चे होंगे तो जन्नतियों के बच्चे ना, हाँ एक्चुअली एक बात में मिस हो गई कि ये तो यानी जहन्नुमियों के बच्चे हैं ना। ठीक है, क्योंकि जहन्नुम इनके जो वालिदैन हैं वो तो जहन्नुम में, बच्चे तो जहन्नुम में नहीं जा सकते, ईमान वालों के बच्चे तो ईमान वालों के साथ होंगे ना, क्योंकि ईमान वालों का तो मजा ही उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक उनकी औलादें उनके साथ ना हो। ठीक है ना, तो इन बच्चों को फिर खिदमत के ऊपर अगर लगा दिया तो फिर ईमान वालों के साथ वो यानी उनके घर का फर्द तो नहीं बन सके ना एक तरह से। बहरहाल जहन्नुमियों के बच्चे जो हैं वो इस तरह से यहाँ पे यानी वन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस। बहरहाल इसके बाद फरमाया इज़ा रअयतहुम, कि जब तू उनको देखेगा हसिबतहुम तो तू समझेगा तू ख्याल करेगा लुलुअम मंसूरा उन लोगों के बारे में कि जैसे कि ये बिखरे हुए मोती हैं, बिखरे मोती। हजरत उमर पारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब भी मशहूर है बिखरे मोती। ठीक है, तो ये बिखरे मोतियों की तरह से होंगे, यानी इतने खूबसूरत लग रहे होंगे, इतने प्यारे लग रहे होंगे कि और इतने शाइन कर रहे होंगे जैसे मोतियां शाइन करती हैं। है कोई उधर जा रहा है और ये आला दर्जे की तस्बीह है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अच्छा यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ये चीज अभी रोक देते हैं। एक दो सवाल थे जो आप लोगों से कहा था कि क्लास में पूछ लिएगा या आप नाम भी पूछें तो, क्योंकि मैंने वादा किया था क्लास में बताने का, तो उन सवालों को एड्रेस कर लेते हैं अभी, ठीक है? अगर किसी को कोई सवाल है तो वो भी प्लीज़ पूछिए, कोई नया सवाल है अगर, ठीक है? इस ट्रांसलेशन तफसीर के बारे में हो या जनरल को सवाल हो, जैसे आपको, आप लोगों को पिछली क्लास में, पिछली क्लास से पहले लिखा था कि इस क्लास के अंदर सवाल किया करें। अच्छा, तो एक जो था ना वो किसी तालिबा का सवाल था, कि जो इंसान अल्लाह ताला का जिक्र करता है, तो उसके बारे में हमारे शेख का एक एक्चुअली एक कॉल है, ठीक है? वो इस तरह से उसका मफहूम बनता है कि जिक्र करने से कुव्वत इरादी पैदा होती है, ठीक है? जिक्र करने से इंसान के अंदर कुव्वत इरादी पैदा हो जाती है, फिर वो अपने काम निपटा लिया करता है, ठीक है? तो इस पे था कि जी, जो हम आयात एक दूसरी क्लास के अंदर तफसीर की पढ़ रहे हैं, कलमतु तय्यबा से मुतअल्लिक, तो कलमतु तय्यबा वाली वाली बात को भी जो है वो अल्लाह के जिक्र से ही तशबीह दी जा सकती है, कि कलमा तय्यबा की वजह से, यानी जो इंसान कसरत से जिक्र करता है तो उसकी वजह से उसको अमल की तौफीक मिल जाती है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर कुव्वत इरादी पैदा हो जाती है, और कुव्वत इरादी पैदा होने की वजह से वो खूब इबादत के आमाल और खूब नेकी के आमाल कर पाता है, ठीक है? तो सवाल ये था कि क्या ऐसे भी इसको समझा जा सकता है कि कलिमतु तैयब जो है वो नेक आमाल को उठाते हैं, यानी करने की तौफीक मिलती है कलमा तैयबा यानी जिक्र करने से, ठीक है? तो उसका जवाब ये होगा कि जो इंसान जिक्र करता है ना, तो जिक्र करने से उसको कुव्वत इरादी बेशक मिलती है, ठीक है? और कुव्वत इरादी मिलने से, जैसे कि हजरत ने फरमाया कि नेक अमाल की उसको तौफ, यानी वो नेक अमाल कर पाता है, अपने कामों को फिनिश कर पाता है, ठीक है ना? यानी कसलान की वजह से, सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन की वजह से ना, हम बहुत से काम करने चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, ठीक है? यानी कोई और हमें रोक नहीं रहा होता, हालात नहीं रोक रहे होते, मजबूरियां नहीं रोक रही होती, सिर्फ अपनी काहिली रोक रही होती, ठीक है? तो जो कसरत जिक्र करता है ना, तो उसकी काहिली जो होती है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, जिसकी वजह से ना उसकी जात रुकावट नहीं बनती नेक अमाल करने करने के रास्ते में, ठीक है? तो ये तो हो गया कुव्वत इरादी वाला मामला, ठीक है? कसरत जिक्र से कुव्वत इरादी इस तरह से बंदे की बन जाती है और अमाल करता है वो, ठीक है? अब यहाँ पर इतना टाइम भी नहीं है, और मेरे ख्याल में वो किसी और मौके पर होगा, कि जिक्र से मुराद क्या है, ठीक है? तो अभी हम सिर्फ इसको मुतलक जिक्र कह रहे हैं, ठीक है, कि जिक्र करने से कुव्वत इरादी बढ़ जाती है। दूसरी बात उसी मैसेज में जो कि आप में से किसी ने भेजा था सवाल पूछते हुए, वो ये था कि जो जिक्र करने वाले लोग होते हैं ना, तो वो हर वक्त तजब्जुब का शिकार नहीं रहते। तजब्जुब ये भी उस मैसेज में मौजूद था, कि तजब्जुब का शिकार नहीं रहते कि ये करूं या ये ना करूं, ये सही है कि ये गलत है, ये फायदेमंद है कि ये नुकसानदेह है, इसको कहते हैं तजब्जुब, ऑलवेज इन डाउट, ठीक है ना? चीजों के मुताल्लिक, बातों के मुताल्लिक, लोगों के मुताल्लिक हर वक्त शुबे में मुबतला रहना, शक में मुबतला रहना, क्लियर नहीं हो पाना कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है? तो कसरत जिक्र से ये जो तजब्जुब है ना, ये तजब्जुब भी इंसान का खत्म हो जाता है, तजब्जुब की कैफियत, डाउटफुलनेस की कैफियत, ये भी खत्म हो जाती है, ठीक है? तो ये बेशक ये बात बिल्कुल सच है, और ये होता कैसा है, अब इसकी भी काफ़ी सारी तफसीर बयान की जा सकती है। बहुत ही सिंपल इसकी तफसीर ये हो सकती है कि जो इंसान कलील जिक्र करता है, ठीक है, तो कलील जिक्र करने वाला का तो कुरान ने भी जिक्र किया है कि भाई ये जो मुनाफिकीन होते हैं ना, वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला, ये अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं लेकिन थोड़ा, ठीक है? और फिर कुरान क्या फरमाता है, मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक, ठीक है, ये जो है ना हर वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं, ठीक है। तो कुरान के अल्फाज क्या है कि मुनाफिकीन अल्लाह का थोड़ा जिक्र करते हैं और ये हमेशा तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं, ठीक है। तो अब ये बात 100% कंफर्म हो गई कि अगर कोई तज़ब्ज़ुब का शिकार है तो वो क्यों तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्योंकि अल्लाह ताला का बहुत कम जिक्र करता है और वो मुनाफिकत का भी शिकार होता है, ठीक है। आम अल्फाज में इसको कहेंगे कि असल में ना इसकी लाइट ऑफ होती है, ठीक है ना, इसकी जो अकल की लाइट होती है ना वो ऑफ होती है। तो चूंकि लाइट ऑफ होती है, अंधेरा होता है, तो अब अंधेरे में तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं किधर जाऊं, पता नहीं कहां पर दरवाजा है, कैसे कैसे मैं आप कमरे से निकलूंगा, कहां पर फर्नीचर पड़ा हुआ है, कहां पर कुर्सी पड़ी हुई है, कहां पर जो है वो कोई गुलदान पड़ा हुआ है। अब ये ठोकरें खा रहा होता है, कभी इधर से ठोकर, कभी इधर से ठोकर, कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर चोट लग रही है, दरवाजा ही नहीं मिल रहा। क्यों भाई? लाइट बंद है। तो जो जिक्र करता है अल्लाह ताला उसकी अकल की लाइट ऑन कर देते हैं। जब अकल की लाइट ऑन हो जाती है, अब लाइट के अंदर आपको सब समझ में आ रहा होता है, सब नजर आ रहा होता है, राइट। कहीं पे कोई कोई चीज पड़ी हुई है, कोई मसला पड़ा हुआ है, दरवाजा किधर है, कहाँ पर जो है वो पंखे का स्विच कहाँ पर है, सारी चीजें नजर आ रही होती हैं। तो क्या फर्क हो गया? कमरा तो चेंज नहीं हुआ, कमरा तो वैसा का वैसा ही है, जैसे पहले कमरा था वैसे ही भी कमरा है, कमरा तो नहीं बदला। इन अदर वर्ड्स, दुनिया में तो कोई तब्दीली नहीं आई, राइट। दुनिया की हालात तो वैसे ही रहे जैसे पहले थे, जैसे कमरे के हालात वैसे ही रहे जैसे पहले थे। फर्क सिर्फ ये हो गया कि पहले इसके पास टॉर्च नहीं थी, या टॉर्च थी भी तो लाइट ऑफ थी, राइट, टॉर्च ऑफ थी। अब इसकी टॉर्च जो है वो उसकी लाइट ऑन हो गई, ठीक है ना। अब दुनिया की मुश्किलात को समझना आसान हो गया, क्या सच है क्या बातिल है नजर आना शुरू हो गया। ये शख्स जो होता है जाकिर होता है, ठीक है, और ऐसा शख्स पर तज़ब्ज़ुब से निकल आता है। तो दोनों चीजें मिलती हैं जिक्र से, एक तो कुव्वत इरादी यानी काम करने की हिम्मत मिलती है, और दूसरी के यकीन बिल्कुल क्लियर हो जाता है मामला कि करना क्या है, ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल था पहले का पूछा हुआ, फिर उसके बाद एक और भी था, लेकिन अभी मेरे खान उसको रहने देते हैं। आपने जो लिखा है उसको देखते हैं कि इल्म और इरादे से गुनाह ना करना भी जिक्र है। जी हाँ, इल्म और इरादे से गुनाह ना करना बिल्कुल जिक्र है, अल्लाह ताला की याद दहानी, याद जो अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रखता है ना, तो वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर ही नहीं सकता, इस वजह से ये भी जिक्र है। वकूफ कल्बी जिक्र कसीर में शामिल है। अगर वकूफ कल्बी आप 24 घंटा बल्कि 100% अगर वकूफ कल्बी की हालत में हैं तो ये जिक्र कसीर में शामिल है, ठीक है। 100% क्या मतलब कि आप एक भी गुना अपने 24 घंटे के दिन के अंदर इल्म और इरादे से नहीं करती, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, आप 100% वकूफ कल्बी मेंटेन की हुई हैं, इसको जिक्र कसीर कहते हैं, ठीक है ना। इस यानी अच्छा, यहाँ हम मस्जिद जाते हैं जैसे कुरान सुनने जुमे को इशा, वहाँ मस्जिद से पढ़ने के बाद तफसीर शुरू होती है, हाइजा औरत को दरवाजे पर बिठाया जाता है और दरवाजा खोल दिया जाता है, वहीं से दर्स सुनती हैं। हाँ, अगर उस मस्जिद के अंदर पूरी जो एरिया है वो मस्जिद डिफाइंड है, और जाहिर है वहाँ जो मुफ्ती साहब होते होंगे उनको इतनी बात तो पता है ना कि मस्जिद क्या डिफाइंड है क्या डिफाइंड नहीं है, जाहिर है उसके अंदर हाइजा औरत नहीं बैठ सकती है। अच्छा, मजलिस क्लास में आखिरत की फिक्र रहती है लेकिन इसके बाद इसमें कमी आ जाती है एज वी गेट बैक टू आवर लाइफ, इसके लिए क्या करें? इसके लिए घर के अंदर जो यानी जो सोहबत आपको मजलिस में मैसर होती है, तो घर में जाकर के पहली बात तो वो सोहबत नहीं होती, ठीक है ना। बेशक हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं, हमारी मजलिस की क्या हैसियत, लेकिन उसूल तो वही रहते हैं ना, मॉडल तो वही रहता है ना। तो यही मॉडल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी था, जो कि नाफका हंजला वाली जो हदीस आपने सुनी होगी ना कि हंजला मुनाफिक हो गया, वो क्यों कह रहे थे, वो इसीलिए कह रहे थे ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मजलिस में जो बैठे होते हैं तो हमारे दिल की जो कैफियत होती है, तो हम घर जाने के बाद वो कैफियत नहीं रहती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर ऐसा ना होना तो फिर तो तुम फरिश्ते बन जाओ। क्या मतलब? फरमाया ना कि फरिश्ते, यानी ये नहीं फरमाया कि फरिश्ते बन जाओ, बल्कि ये फरमाया कि फरिश्ते तुमसे मुसाफिया करें, مدینہ منورہ کی گلیوں میں کیسے مسافیہ کریں گے فرشتے مدینہ منورہ کی گلیوں میں کسی انسان کے ساتھ، جبکہ وہ انسان خود بھی فرشتہ بن جائے تبھی فرشتوں کے ساتھ مسافیہ کر سکتے ہیں نا، ورنہ انسان اپنے جسم کے ساتھ تو فرشتوں کے ساتھ مسافیہ نہیں کر سکتا. کیا مطلب ہے کہ تم انسان ہو، تمہاری کیفیات بدلتی رہیں گی، مجلس میں اور کیفیت ہوگی، گھر میں اور کیفیت ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب زیادہ سے زیادہ تم کیا کر سکتے ہو، کچھ کیفیات کو ریٹین کرنے کے لیے جو مجلس میں تھیں ان کو ریٹین کرنے کے لیے، کہ گھر میں جب چلے جاؤ نا تو وہاں پر بھی اللہ کا ذکر انڈیویجولی کرتے رہو. ٹھیک ہے نا، تو تم فرشتہ تو پھر بھی نہیں بنو گے، لیکن کم از کم تم گناہ کرنے سے بچے رہو گے اور تمہارے دل کی کیفیت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل لیول تک رہے گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ گھر جاتے ہی گناہ کرنا شروع ہو گئے. کیفیات بے شک بدلتی رہتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، لیکن گھر جا کے گناہ کرنا شروع ہو جائیں اور مجلس کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ رونا دھونا مچائے ہوئے ہوں تو یہ اتنی یعنی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، تو گھر میں جا کے ذکر کرتے رہیں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حصہ مجلس میں شامل ہے، کیا ہر مسجد کا یہ معاملہ نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تو ہو گئی. گھر میں صبح سے شام تک آپ ہی لوگوں کا تذکرہ رہتا ہے. اچھا، ہماری کون سی ایسی خاص بات ہے؟ یار آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں کہ مستقل باتیں چل رہی ہیں علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، تو چونکہ ہم اس ٹاپک پہ آج کل بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہر مسلمان کافی پریشان ہے، تو یہ باتیں گھروں کی بات چیت کا حصہ ہیں. نہیں، یہ تو نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر اللہ کا تذکرہ، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یعنی دین کا تذکرہ، دین والوں کا تذکرہ جو ہے نا، یہ یعنی اللہ کے تذکرے کے اندر یہ شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ تذکرہ کس نسبت سے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی نسبت سے یہ آپ ڈسکشنز کر رہے ہیں نا. ہم حضرت جی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا ہم مدرسے کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا ہم کلاسز کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اب سارا وقت بیٹھ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو نہیں پڑھ سکتے نا، لا الہ الا اللہ بھی نہیں سارا وقت پڑھ سکتے. پھر یہ سب باتیں کب کریں گے؟ ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں مشورہ کرنا ہوتا ہے، کسی کو کیا مشورہ دینا ہوتا ہے، کیسے کسی کو گائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، الحمد للہ گھر والوں کے ساتھ یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. تو چونکہ یہ دین کی نسبت سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو یہ بھی ذکر اللہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، زیادہ طالب علم میں آپ لوگوں نے وہ پڑھی بھی تھی. ٹھیک ہے، کہ ذکر اللہ یا ذکر اللہ سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں. اچھا، ایک آخری بات، ویسے کافی ایکسٹرا ٹائم ہو گیا لیکن ایک آخری بات کر کے یارجس ختم کرے گا، کہ شروع میں آپ لوگوں کے ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ شیخ سے جو سوال کیا جاتا ہے نا، تو اس کے اندر ذاتی اصلاح کی نیت ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ بتا دیں کہ میں آپ سے ایک عمومی سوال، علمی سوال کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اپنے ذاتی سوال کو علمی سوال کا رنگ دے کر کے نہ پوچھا کریں. ٹھیک ہے نا، یہ بات کلیئر ہے سب کو؟ سوال ذاتی ہے لیکن شیخ کے سامنے اس کو علمی سوال بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس کو یہ نا ٹرانسپیرنسی کی بات ہوئی نا پچھلے کئی کلاسز کے اندر، یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی پھر. ٹھیک ہے نا بھائی، آپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو پلیز ٹیل دا شیخ کہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، کیونکہ اگر وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے لیکن آپ کو عمومی مسئلہ بنا کے پیش کر رہی ہیں، تو جو شیخ صاحب جواب دیں گے نا آپ کے، وہ جواب جو ہے نا وہ کمپلیٹ جواب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ایک اس کے اندر نقص ہوگا اس جواب کے اندر. ٹھیک ہے نا، کیونکہ عمومی جواب دیا جا رہا ہے اور یہ تو فائدہ ہی نہیں ہوا. اچھا، دوسری بات یہ، یعنی یہ تو پہلے ڈسکس کر لیا نا، اور دوسری چیز یہ کہ جو اگر ہم علماء سے کوئی چیز پوچھتے ہیں نا، تو یعنی گائیڈنس لینے کے لیے جب ہم علماء سے کوئی چیز پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ علماء جب ہمیں کسی چیز کے اوپر گائیڈ کرتے ہیں، سم ٹائمز انسولیسیٹیڈ بھی گائیڈ کرتے ہیں، یعنی ہم نے اسپیسیفکلی ان سے پوچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ خیر خواہی کی وجہ سے نا وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، تو وہ اس کے اوپر ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک ہم نے ان سے اصلاح مانگی نہیں ہوتی ہے، سولیسٹ نہیں کری ہوتی ہے، طلب نہیں کری ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کا منصب ہے کہ انہوں نے اصلاح کرنی ہے، ठीक है ना। और हमने भी अपने आप को उनके सामने जरा शागिर्द के तौर पर और सालिक के तौर पर पेश किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब ना वो जब कोई चीज गलत करते हुए हमें देखते हैं ना, तो वो इस्लाह की नीयत से हमें हम पर हम यानी एतराज कर देते हैं कि ये बात जो है ना, ये बजाहिर बड़ी अच्छी लग रही है लेकिन इसके अंदर ये खामियां हैं। ठीक है, बजाहिर अच्छी लग रही है लेकिन इसके अंदर ये खामी है। ठीक है, तो अब हमें जो है ना वो उनके साथ अच्छा गुमान रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि भाई ये ऑफेंडेड हो गए हैं, ये ऑफेंडेड हो गए हैं और कोई चीज उनको बुरी लग गई है ना, यानी जाती तौर पर जाती चीज उनको बुरी, इनकी जात को बुरी लग गई है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो एतराज कर रहे हैं, तो अब ये मुझसे नाराज हो गए होंगे। नहीं भाई, ये जात वाला मसला नहीं होता, ठीक है, ये जातियात की बात नहीं है। उनका तो एक मनसब है, उनका तो एक काम है कि उन्होंने कोई चीज अगर गलत होती भी देख रहे हैं या आपको किसी गलत रास्ते के ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, तो उसकी हकीकत आपके सामने एक्सप्लेन कर दें, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ना उनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये नीयत पे शक करना बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब जरा दिल को थाम करके थोड़ा इस बात को सुन लें, आजकल हालात चल रहे हैं, ठीक है ना। उलमा तकरीबन सारे के सारे वो एक तरफ हैं और बाकी दीनदार लोग, ठीक है ना, हमारे जैसे दीनदार लोग तकरीबन सारे के सारे वो दूसरी तरफ हैं, ठीक है। उलमा तकरीबन सारे के सारे, 100% नहीं लेकिन तकरीबन सारे के सारे एक तरफ हैं, ठीक है, और उनके साथ उनके तुलबा भी हैं, ठीक है, और बाकी जो दीनदार हमारे जैसे, ठीक है ना। और अपने अपनी हकीकत हमें जरा समझनी चाहिए कि हम कैसे दीनदार हैं, ठीक है। तो हम जैसे दीनदार सारे के सारे तहज्जुद गुजार माशाल्लाह, राइट, वजीफे पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, और भी बहुत सारे नेकी काम करने वाले, गरीबों को खाना खिलाने वाले, बच्चियों की शादियां करवाने वाले, ये हम दीनदार लोग हैं, इंसानियत की खिदमत करने वाले, ठीक है ना। और उलमा तो ये कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। बहरहाल इसको, तो हम जैसे दीनदार एक तरफ हैं और उलमा और उनके तुलबा दूसरी तरफ हैं, ठीक है। तो अब जो हम जैसे दीनदार हैं ना, तो हमारी तो ये आदत है, ठीक है, कि हमने तो लोगों की नीयत पे शक करना होता है, ठीक है। तो अब जो है ना हम उलमा की भी नीयत पे शक, ठीक है, कि भाई ये जो मुखालफत कर रहे हैं ना, तो ये तो कुर्सी की वजह से मुखालफत कर रहे हैं, राइट, ये तो इनको सीट नहीं मिली ना, इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं। आज इनको सीट दे दो, आज इनको वजारत दे दो, ये मुखालफत छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम जैसे दीनदार लोग उलमा पर ये एतराज कर रहे हैं। दूसरा एतराज क्या कर रहे हैं, बड़ा मजे का एतराज, वो क्या है, वो ये है कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं ना, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो एहतजाज है ना, ना तो ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, राइट, ना ये टैक्सों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ना ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस वजह से एहतजाज कर रहे हैं ना, वो हमारे नजदीक वजह ही नहीं है कोई। हमारे नजदीक वजह क्या है, महंगाई। हमारे नजदीक वजह क्या है कि जी सड़कों का निजाम, ठीक है ना, और इस किस्म की चीजें। तो भाई हम कहते हैं कि ये जो मौलवी लोग हैं, ये भी अगर एहतजाज करें ना, तो करें तो सही, लेकिन इन चीजों के ऊपर एहतजाज करें, राइट। ये किस किस्म की तहजीबी इर्तिदाद, ये क्या बला होती है, ये मदारिस की हिफाजत, इसकी क्या जरूरत है, ये तो वैसे ही इरेलीवेंट चीजें हैं, राइट। 1400 साल पुरानी बातें पढ़ा रहे होते हैं, राइट, दकयानूसी किस्म के जो है वो, यानी जो नजरियात हैं और सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं, राइट, इस तरह की चीजें, दुनिया की जो जो जरूरतें हैं उनको डिस्कस नहीं करते हैं, और मरने के बाद की जरूरतों को डिस्कस करते रहते हैं हर वक्त, राइट। तो ये किस किस्म की ग्राउंड रियलिटीज हो, ये तो रियलिटीज ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज ही नहीं है। इनको अगर एहतजाज करना ही है तो ग्राउंड रियलिटीज पर करते हैं ना, लेकिन ये तो नहीं कर रहे ग्राउंड रियलिटीज पर, इस वजह से हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि यूं खामखा के एहतजाज कर रहे हैं। तो यकीनन इनकी कोई जाती गर्ज है असल में, ठीक है, इनकी जाती गर्ज है, इनका जाती मसला पूरा नहीं हो रहा, इनके मुंह में हलवा नहीं जा रहा, इस वजह से एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। उलमाए कराम, मशायख ओज़ा, उनकी प्रायोरिटीज आखिरत होती हैं, उनकी प्रायोरिटीज दीन होता है, जिसको के जो दुनियादार लोग होते हैं उनके तो ये दीन समझ में नहीं आता ना। ठीक है, कि दीन की असलियत क्या है, आखिरत से शुरू होता है दीन। तो इस वजह से चूंकि उनके समझ में नहीं आता ना, तो अब वो इस तरह की बातें करते हैं कि ये जो मौलवी लोग हैं ना, ये दीनी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, दीनी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी दीन को एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी दुनिया की खातिर। ठीक है, अपनी जाती अखराज की खातिर, अगराज की खातिर दीन को इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हमारी सोच ही नहीं जाती कि आखिरत की अगराज की खातिर भी कोई काम किया जा सकता है। राइट, अपनी जात से बुलंद होकर के भी कोई काम किया जा सकता है। हमारी सोच ही उधर तक नहीं जाती है, हम सोच भी नहीं सकते इन सब चीजों के बारे में हकीकत में। ठीक है ना, तो अलमरउ यकीसु अला नफ्सिही। ठीक है, इस वजह से ना अरबी की कहावत जो है वो बिल्कुल 100% हमारे ऊपर पूरी उतरती है कि आदमी दूसरों को भी अपने ऊपर कयास करता है। क्योंकि हम सिर्फ दुनिया के अंदर मुकय्यद होकर के सोचते हैं, इस वजह से हम इन उलमा और मशायख को भी ऐसे ही समझते हैं कि वो भी जो भी कर रहे हैं ना, दुनिया की खातिर कर रहे हैं। और जब अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई इनकी दुनिया की अगराज तो नजर नहीं आ रही, तो हम फिर सर खुजाना शुरू कर देते हैं कि फिर कर क्यों रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं फिर ये एहतजाज, क्योंकि महंगाई के खिलाफ तो ये एहतजाज कर नहीं रहे, तो फिर क्यों कर रहे हैं एहतजाज। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से जब कोई शेख, कोई आलिम, वो हमारी गलती की इसलाह करता है ना कि भाई आप गलत सोच रही हैं या आप गलत रास्ते पे जा रही हैं, तो हम समझते हैं कि भाई हमने इनको ऑफेंड कर दिया है ना। ठीक है, जैसे मौलाना साहब को ऑफेंड कर दिया है कि उनको सीट नहीं दी है, तो ऑफेंड होने की वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो छोटे मौलवी साहब हैं, ये छोटे मौलवी साहब भी जो एतराज कर रहे हैं ना, वो इसलिए एतराज कर रहे हैं क्योंकि हमने इनको ऑफेंड कर दिया है। ठीक है ना, हमने इनको ऑफेंड कर दिया है, इस वजह से वो एतराज कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नीयत पे शक करना, नीयत पे शक करना। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई सवाल? सर पे से गुजर गया, कोई सवाल है किसी को? ठीक है, तो बात को समझने की जरूरत है। अगर हम इस तरह के काम करेंगे ना, अपने मशायख की नीयत पे शक करना शुरू कर देंगे, ठीक है, अपने उलमाए कराम की नीयत पे शक करना शुरू कर देंगे ना, शक तो क्या बल्कि यकीन कि वो बदनीयत ही हैं। राइट, तो फिर हमारे ईमान की सलामती की फिर कुछ, ये फिर वजीफे हमें नहीं बचा सकते, ये तहज्जुद की नमाजें नहीं बचाएंगी हमें, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।